प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन सभी मित्रों का जो आज हमारे कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा जहां पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर से अलग, आशा से रहित, परमेश्वर की वाचा से वंचित अन्य जाति जब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। जी हाँ, पौलुस ने हमें इस बात का स्मरण दिलाया इफिसियों की पत्री के माध्यम से कि एक समय ऐसा था कि अन्य जाति परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा अब हम सब कोई उसके निकट आ सकते हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। यद्यपि कि हम दूर दराज में रहते हैं, गांव और देहातों में रहते हैं, हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है, लेकिन हम धन्यवादित हैं इस रेडियो के लिए जिसके द्वारा से आप अपने वचन को हम तक पहुंचाते हैं। पिताजी, इस समय जब हम एक साथ मिलकर आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, उसे ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, आशाहीन हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं या नौकरी की तलाश में हैं। पिताजी, आप उन सब पर अपनी अनुग्रह प्रदान करें ताकि एक एक जीवन आप में आनंदित होने पाए। इस समय हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 2:14-17 को निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री 2:14-17 में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, मसीह को ग्रहण करके आप एक देह के अंग ही नहीं परमेश्वर के समक्ष अन्य सब के बराबर खड़े होते हैं। अतः आज विश्वासियों में विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम सब मसीह में एक किए गए हैं। यदि आप मसीह के विश्वासी हैं तो हम कुछ भी हो अंतर नहीं है। हम सब अनंत काल तक एक साथ ही रहेंगे। अतः यहाँ रहते हुए हमें एक दूसरे से इसकी चर्चा करना कोई बुरा विचार नहीं है। इस गद्यांश में यहूदियों और अन्य जातियों में जो अंतर था उसका उल्लेख किया गया है। प्रभु यीशु वह शांति है जो उनमें लाई गई है। उनके बीच की दीवार या विभाजन, उनका आपसी वैर समाप्त कर दिया गया है। उसने एक नए मनुष्य की रचना की है। हम मसीह में एक कर दिए गए हैं। मसीह शांति ले आया है। इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर के साथ हमारा मेल है। अतः हमें आपस में भी मेल रखना है। जी हाँ, परमेश्वर मेल कर चुका है। वह आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है यदि आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं। अतः हमारे लिए जो संदेश है वह 2 कुरिन्थियों की पत्री 5:20 में है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे तो आप एक नई देह, विश्वासियों की देह में जोड़ दिए जाएंगे। चाहे आप यहूदी हो या अन्य जाति, आपकी चमड़ी का रंग अंतर उत्पन्न नहीं करेगा। सब मसीह में एक हैं। हम नए मानव हैं, नई सृष्टि हैं और हमें शांति में वास करना है। मेरे प्रियो, यहां मसीह यीशु के महिमान्वन व्यक्तित्व पर मुख्य बल दिया गया है। उसने क्रूस के द्वारा मेल ही नहीं करवाया, परंतु वे जो उसमें विश्वास करते हैं उसमें स्थापित किए जाते हैं और नई सृष्टि होते हैं। परमेश्वर ने आरंभ में तो अंतर रखा था कि यहूदियों को अन्य सब जातियों से अलग रखे, परंतु इसके कारण यहूदियों में अंततः घमंड उत्पन्न हो गया और इसका परिणाम यह हुआ कि यहूदियों और अन्य जातियों में एक दूसरे के लिए घृणा उत्पन्न हो गई। परंतु मसीह में यहूदी और अन्य जाति में मेल होता है। यह मेल उनकी नई दशा के कारण ही नहीं, पौलुस के अनुसार एक नए मानव के कारण है। यही कारण है कि कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र में 10 अध्याय उसके 32 पद में वह कहता है, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। परमेश्वर की कलीसिया नया मानव है। मेरे मित्रों, अन्य जाति को यहूदी के स्तर तक नहीं उठाया गया है, परंतु दोनों को ही एक ऊंचे स्तर पर लाया गया है। क्रिस्तोत्तम ने कहा, उसके कहने का अर्थ यह नहीं कि उसने हमें उनके ऊंचे मान सम्मान तक उठाया है, परंतु हम दोनों ही को एक ऊंचे स्तर पर लाकर खड़ा किया है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि दो मूर्तियां हैं, एक चांदी की हैं और दूसरे शीशे की। अब दोनों को पिघला दिया जाए और वे दोनों नए सिरे से सोने की हो जाएं। इसी प्रकार उसने दोनों को एक कर दिया है। यह एक अति उत्तम उदाहरण है कि हम दोनों कैसे मसीह में एक किए गए हैं। मेरे मित्रों, मैं मनुष्य के सर्वजनीन मातृत्व और परमेश्वर के व्यापक पितृत्व में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए यह एक जघन्य झूठी शिक्षा है। मैं यह मानता हूं कि सच्चा भाईचारा उनमें होता है जो मसीह में है। हम नई सृष्टि हैं, हम मसीह में हैं, नए मानव हैं। यही वह भवन है, वह मंदिर है जिसका निर्माण आज परमेश्वर कर रहा है। अब यह कहने की अपेक्षा कि अन्य जाति यहूदी के स्तर तक उठाया गया, यह कहना भी उचित ही होगा कि यहूदी अन्य जाति के स्तर पर नीचे लाया गया, क्योंकि यहूदी और अन्य जाति दोनों ही पाप की दशा में थे। हम सब पापी होने के कारण भाई भाई, क्योंकि हम आदम की संतान हैं। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। हम सब की भी यही दशा थी। हमारा मेल अर्थात यहूदियों और अन्य जातियों का मेल, जब यहूदी और अन्य जाति पापी क्रूस के पास आते हैं तो वे नई सृष्टि हो जाते हैं, वे नई सृष्टि होते हैं। मसीह की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पुराने नियम का मंदिर जो मिलाप वाले तंबू के स्थान पर बनाया गया था, उसमें अलग अलग भाग थे और उन तीनों विभाजनों के प्रवेश द्वार अलग अलग थे, बाहरी परिसर, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। याजकों के लिए, इसराइल की प्रजा के लिए, स्त्रियों के लिए और अन्य जातियों के लिए भी अलग अलग खंड थे। मसीह यीशु ने अपनी मृत्यु द्वारा पर्दा हटा दिया और वह मार्ग बाहरी परिसर, सत्य पवित्र स्थान और जीवन महापवित्र स्थान बन गया। अब हम मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे आ सकते हैं। वे जो उसके पास आते हैं, वे इन खंडों में से निकालकर मसीह में अवस्थित किए जाते हैं। यह एक नया मंदिर है जिसमें विभाजन नहीं है। क्रूस अवरोधकों को हटाता है और सुसमाचार अन्य जातियों में सुनाया जा रहा है। वे जो दूर थे और यहूदियों को जो निकट थे, यह कैसा चित्रण है। मेरे मित्रों, हम इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ध्यान दीजिए, मुझे संदेह है कि आपने ध्यान दिया है कि यह छोटा सा पद एक महान पद है। इसमें त्रिएकत्व है, क्योंकि उसी अर्थात मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा पवित्र आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यहूदी और अन्य जाति क्रूस के पास बराबर के पापी हैं। इसके अतिरिक्त मसीह के द्वारा उन दोनों की पहुंच परमेश्वर के पास बराबर की है, जो किसी भी मनुष्य के लिए एक महिमामय सौभाग्य है। मेरे प्रियो, पौलुस रोमियो की पत्री 5 अध्याय में स्पष्ट करता है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना सबके लिए एक लाभ है। हमें मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकट आने का अवसर प्राप्त है और यह अति अद्भुत है। मेरे विचार में इसका अर्थ यह नहीं कि हम निर्लज्जता से परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़े चले आएं, परंतु यह कि प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर के पास आने का सौभाग्य है। प्रत्येक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के बराबर परमेश्वर के निकट आने का अवसर प्राप्त है। मुझसे लोग पूछते हैं कि जब मैं बीमार अवस्था से संघर्ष कर रहा था, तब मैंने कुछ विशेष जनों को मेरे लिए प्रार्थना करने को क्यों नहीं चुना? क्योंकि मैं विश्वासियों की याजक वृत्ति में विश्वास रखता हूं, अर्थात सब विश्वासियों की पहुंच परमेश्वर तक बराबर है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं निर्माण का अर्थ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। पौलुस अन्य जातीय विश्वासियों को स्मरण कराता है कि वे यद्यपि परदेशी और परमेश्वर से अलग थे, अब उनका स्थान पवित्र जनों की संगति में है। पवित्र लोगों से अभिप्राय पुराने नियम के पवित्र जनों से नहीं है, ये लोग नए नियम के पवित्र जन हैं, मसीह की देह के सदस्य हैं, वे दास नहीं संबंधी हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, वे उसके प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। यूहन्ना कहता है 1 यूहन्ना 2:12 में, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हम बालक हैं, यह हमारा नया संबंध है जो पुराने नियम से भिन्न है। परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य दाऊद भी परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसका दास कहलाता था। इसे हम 2 सामुएल 7:8 में देखते हैं। और मूसा भी उसका दास कहलाता था, इसे हम गिनती की पुस्तक 12:7 में देखते हैं। मेरे मित्रों, यह नागरिकता इसराइल और पृथ्वी के यरूशलेम की नहीं है, यह स्वर्ग की है। फिलिपियों की पत्री 3:20 में पौलुस कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोहते हैं। हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, हम इस समय स्वर्ग के हैं। किसी और अंग्रेजी अनुवाद में नागरिकता स्वदेश को अधिवास लिखा गया है। हम आगे देखते हैं प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर स्थापित किए गए हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं अपने हाथों से नींव रखी है। आरंभिक कलीसिया की शिक्षाएं प्रेरितों की शिक्षा थी, जिसे हम प्रेरितों के काम 2:42 में पढ़ते हैं। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। पद 20 में भविष्यद्वक्ताओं का उल्लेख है। क्या वे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता हैं या नए नियम के? क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं को प्रेरितों के तुल्य रखा गया है, अतः वे नए नियम के भविष्यद्वक्ता हैं। मेरे विचार में इसकी पुष्टि इस अध्ययन में होगी, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु ही वह चट्टान है जिस पर कलीसिया खड़ी की गई है। 1 कुरिन्थियों 3:11 में पौलुस कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और पत्रस कहता है 1 पत्रस 2:6-8 में, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। मेरे मित्रों, यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रस कहता है कि प्रभु यीशु कोने के सिरे का पत्थर है। इसका अर्थ यह हुआ कि पत्रस यीशु की वह बात समझ गया था जो उसने मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 पद में कही थी, मैं भी तुमसे सच कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु स्वयं के बारे में कह रहा था, वह एक चट्टान है जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं ने नींव डाली और प्रभु यीशु कोने का पत्थर है और वह चट्टान है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मेरे मित्रों, यहाँ पुराने नियम के मंदिर की उपमा दी गई है, परंतु फिर भी अंतर दर्शाया गया है। यरूशलेम के मंदिर में अनेक मकान थे, परंतु मेरे विचार में पौलुस उनका संदर्भ नहीं दे रहा है। उसके कहने का अर्थ है कि प्रत्येक विश्वासी उसमें चुना हुआ है, जैसा कि पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। जी हाँ, पौलुस कलीसिया को मंदिर बताता है जो इस समय निर्माणाधीन है। यह अति रोचक बात है क्योंकि पौलुस के युग में हेरोदेश का मंदिर पूरा नहीं बना था। प्रभु यीशु के जीवन काल में उस मंदिर के निर्माण में 40 वर्ष हो चुके थे और सन 70 में वह ध्वंस किया गया था, परंतु उसका निर्माण कार्य समाप्त नहीं हुआ था। परंतु कलीसिया अभी निर्माणाधीन है और एक दिन इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। लिखा है, जिसमें सारी रचना एक मिलकर एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, अर्थात अभी तक पूरा नहीं बना है। यह रचना भी भिन्न है, इसमें एक के ऊपर पत्थर रखे हुए नहीं है। यह मंदिर विकसित हो रहा है। परमेश्वर अपराधों और पापों में मृतक मनुष्यों को लेकर उनमें जीवन डाल रहा है। जीवित नव जीवन प्राप्त पत्थर एक जीवित मंदिर बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार सुलेमान का मंदिर बिना हथौड़े की आवाज के बनाया गया था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी बिना आवाज के प्रत्येक मृतक पापी को जीवित मंदिर में जड़ रहा है, नया जीवन और बपतिस्मे के द्वारा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसे पवित्र मंदिर या पवित्र पावन स्थल कहते हैं। यह पवित्र इसलिए है कि पवित्र आत्मा इसमें अंतर्वास करता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा उद्धार प्राप्त मसीह में स्थापित किया जाता है। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में अंतर्वास करता है। आगे लिखा है, परंतु तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में इसे हम पाते हैं। कलीसिया मसीह की देह एक निवास स्थान है, एक स्थायी मंदिर है जहां परमेश्वर आत्मा में वास करता है। जब विश्वासी आराधना के लिए आते हैं तो स्वाभाविक है कि पवित्र आत्मा उपस्थित होता है। इस अर्थ में परमेश्वर वहां उपस्थित होता है, परंतु जब विश्वासी आराधना करके लौट जाते हैं तो परमेश्वर भी उस स्थान से चला जाता है। परमेश्वर आराधनालय में नहीं रहता। आज परमेश्वर विश्वासियों में अंतर्वास करता है, इमारतों में या बिल्डिंग में नहीं। हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। यह अन्य जाति विश्वास है कि परमेश्वर मंदिरों में वास करता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया को मंदिर कहने में यह है कि उसकी उपस्थिति और महिमा को पृथ्वी पर प्रकट करे। जब विश्वासी एक आराधनालय में उपस्थित हो तो आज के युग में भी संसार पर उसका प्रभाव पड़े कि परमेश्वर उसके पवित्र मंदिर में है। संसार को यह बोध होना है कि परमेश्वर कलीसियाई आराधना में उपस्थित रहता है। मेरा प्रश्न है, क्या वह उपस्थित रहता है? अति संभव है कि मनुष्य को विश्वास हो जाए कि परमेश्वर वहां उपस्थित है, तो बहुत लोग आराधनालय की ओर खींचे चले आएंगे। जी हाँ, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। परमेश्वर सच्चा है, वह झूठ नहीं बोलता। इसलिए जब दो या तीन विश्वासी उसके नाम से एकत्र होते हैं तो वह उनके मध्य में उपस्थित होता है। आप महसूस करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर वायदा को पूरा करता है। वह सच्चा है, वह उपस्थित रहता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन में इस बात को महसूस करें और इस बात को जान लें कि मेरा देह, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उसकी आत्मा मुझ में वास करती है, यदि मैं उस पर विश्वास करता हूं तब। यदि आज तक हमने ऐसा नहीं किया है, आइए हम प्रभु के पास आएं, अपने जीवन को प्रभु को सौंपें और कहें, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को अपने अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ने में मदद कीजिए, और निश्चय जाने कि वह आपको आशीषों से परिपूर्ण करेगा। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान